ओम शांति। कल की मुरली पर चर्चा करेंगे या और कुछ? बोलो और कुछ क्या है? न्यू टॉपिक कौन सा है न्यू? अच्छा, ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। एकाग्रता, योग, प्योरिटी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल टॉपिक हैं और इन पे ही चर्चा होनी चाहिए हमेशा। सबसे अच्छा टॉपिक, जीवन में आने वाले विघ्न और उन पर विजय, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और कल की मुरली भी बहुत सुंदर है, जिसमें हमारे जीवन का सारा प्रैक्टिकल पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। उसको ही ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी रोशनी हम सभी टॉपिक्स पर डालना चाहेंगे। कंसंट्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और जो भी अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, कल भी मैंने एक बात कही थी, 3 टाइम अवश्य निकालने चाहिए 10-10 मिनट के लिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, या है मुश्किल, समझते हैं बिजी है, मुश्किल नहीं है 10-10 मिनट निकालना। और इसी 10-10 मिनट में आप योग के प्रयोग कर लें तो ये बात भी हो जाएगी जो बाबा ने कही, और एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। कैसे करना चाहिए उस पर हम आ जाते हैं। बाकी एकाग्रता के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है, अगर हम आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो हमारी बुद्धि का भटकना काफी कंट्रोल में हो जाता है। क्योंकि बुद्धि के, मन के भटकने के पीछे एक छोटा सा रहस्य ये है कि ये मन बुद्धि हमेशा ही सुख की, खुशी की, आनंद की खोज करती हैं, और जब इनको हम नहीं दे पाते तो ये इधर उधर भटक जाती हैं उसी की तलाश में। और आत्मिक दृष्टि अपने में एक ऐसा आनंद है, केवल अभ्यास नहीं है वो, ऐसा आनंद है जो मन को कहीं भी जाने नहीं देता है। और ऐसे ही दूसरी चीज, जितने ऊंचे विचार हम अपने मन में रचेंगे, उन विचारों का आनंद हमारे मन को भागने से बचाएगा। ये हैं कुछ पॉजिटिव अभ्यास। ये भी देखा जा सकता है कि मन के भटकने का कारण क्या है। चिंताओं में भटकता है, भय के कारण भटकता है, पास्ट की घटनाएं उसको अपनी ओर खींचती हैं, या किसी का बुरा व्यवहार, किसी की इंसल्ट, कहीं धंधों में लॉस, कहीं संबंधों में कड़वापन, बच्चों की चिंता, क्या कारण है? उसका समाधान ज्ञान के प्रयोग से करना है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान का प्रयोग, गुणों का प्रयोग और शक्तियों का प्रयोग, जो कल बाबा ने कहा, शक्तियों को हम योग से भी जोड़ सकते हैं। इन तीनों को प्रयोग, तीनों के प्रयोग को अपनी एकाग्रता पर केंद्रित कर लें, कि तीनों के प्रयोग के द्वारा बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र करना है। एक मैं कुछ प्रैक्टिकल सी बात लेकर चलता हूं, और ज्ञान, योग, गुणों में शुभ भावनाओं के, संतुष्टता के, पवित्रता के या अंतर्मुखता के जो प्रयोग हो सकते हैं, मैंने भी किए। मैं कह सकता हूं कि मैंने पूरा जीवन किए हैं। मुझे योग के प्रयोग से पहले, जब से बाबा ने योग का प्रयोग शब्द दिया है, उससे पहले मेरे ख्याल में जीवन भर ज्ञान का प्रयोग रहा। ये ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स का अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अडोल बनाने के लिए, माहौल को चेंज करने के लिए, दूसरी आत्माओं को बदलने के लिए, व्यवहार को बदलने के लिए कैसे प्रयोग किया जाए। सबसे पहला एक प्रयोग मैं आपको बताऊं। जैसे संसार में सबको डर लगता है, मुझे भी एक चीज से डर लगता था, और वो है दूसरों के कमेंट्स, ठीक है ना। दूसरे निंदा करते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, तो हर व्यक्ति को डर लगता है। और कई लोग अपनी सेवाएं भी छोड़ देते हैं जब कुछ सुनना पड़ता है, सोचते हैं क्या है सेवा की और शांति भंग हो गई, इससे तो छोड़ो, शांति में रहो। तो मैंने जब ये देखा कि संगठन, कोई भी संगठन ऐसी चीज है जिसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कमेंट न करे, कोई बुरा न बोले। मुझे इस जीवन में अच्छे व्यक्तियों की जीवन कहानी पढ़ने का बहुत शौक था, उनको जोड़ते हुए मैंने बाबा की जीवन कहानी को भी गहराई से देखा। कुछ जीवन कहानी बाबा की ऐसी हैं जो चर्चाओं में नहीं आती हैं, जिनको थोड़े लोग जानते हैं केवल। तो मैं ये देख लिया कि बाबा को भी किस तरह लोगों के कमेंट्स का सामना करना पड़ा, अज्ञानियों का नहीं, ज्ञानियों का। अज्ञानियों का कमेंट्स तो सिंपल बात है, हम सब उसको वैल्यू ही नहीं देते। परंतु बाबा को भी करना पड़ा, मामा को भी, और जो भी महानात्माएं हमारे बीच में हैं उन सबको भी। तो मेरे मन में सबसे पहले ये बात सहज भाव से आ गई कि कमेंट्स सुनना, आलोचना लोगों का करना या ईर्ष्या रखना किसी का, कुछ बुरा बोलना, ये एक संगठन में बड़ी कॉमन बात है। इसलिए मैंने जिस चीज का प्रयोग किया वो थी सरलता। बहुत पहले अव्यक्त मुरलियों में हमने सरलता शब्द का नाम सुना, पहले अपने जीवन में सरलता शब्द नहीं सुना था, इजी हो जाओ। और बाबा के महावाक्य आने लगे, जितने इजी होंगे, सरल होंगे, उतना ही योग इजी होगा, योग सहज हो जाएगा। बाबा ने इसको अच्छा खोला कई बार, और मैंने अपने जीवन में ज्ञान की इस एक धारणा का प्रयोग शुरू किया, सरल रहना, हर बात में सरल रहना शुरू कर दिया, जो मुझसे पहले नहीं आता था। किसी ने कमेंट किए तो बिल्कुल हल्के रूप से देखना, किसी ने कुछ बोला हल्के रूप से देखना। यहाँ तक कि मैंने ये महसूस किया, मेरे अंदर सबसे बड़ी एक चीज मैंने पाई कि अगर मैं किसी को बुरा बोल दूं, जरा सा भी एक शब्द, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे डिस्टर्बेंस हो जाता था अगर मेरे से कोई गलती कम से कम बोल के द्वारा हो गई। तो मैंने देखा कि मैं गलती करके दूसरी गलती कर देता हूं डिस्टर्ब होने की। तो मैंने अपने अंदर ये निश्चय कर लिया कि अगर मेरे से कोई छोटा मोटा बोल भूल जाए तो मुझे जल्दी अपने को सरल चित्त करके हल्का कर देना चाहिए, तब वो गलती ठीक होगी, नहीं तो एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। और सरलता के प्रयोग से मैंने देखा बहुत चीज सरल हो गई। सरलता का प्रयोग मैंने जीवन के हर फील्ड में किया होगा, उदाहरण के लिए बीमारियों में, मुझे अच्छी अच्छी सीरियस बीमारी रही, मैं जानता हूं वो किसी को हो जाती है तो लोग आधे मर जाते हैं शरीर से, कोई दम नहीं रहता शरीर में। अब मैंने उनको हल्का लिया कि ये कुछ नहीं है, मैंने देखा बीमारियां हल्की हो गई। आप प्रयोग कर सकते हैं, काम काज है, कितना भी काम रहा हो, मैं बिल्कुल हल्का रहता था कि ये सब तो हो ही जाना है, यज्ञ चलता आ रहा वर्षों से, काम होता आ रहा है, अब भी हो जाएगा। पहले मुझे खुद काम करना पड़ता था, भोजन बनाना पड़ता था, फिर मुझे भोजन बनवाना पड़ता था। तो शुरू में मैंने महसूस किया कि जब मान लो 1000 लोग आ रहे हैं, ये सुन के जरा सा भारीपन होता था कि कैसे कैसे किया जाएगा। और जल्दी मैंने सरल रहना सीख लिया, तो फिर काम कराते हुए फिर और आगे जितनी भी जिम्मेदारी मिली उनमें सरलता से सबसे बड़ी मदद मिली। क्या क्या मदद मिली? जब हम सरल चित्त होते हैं तो क्योंकि हमारे संकल्प ज्यादा नष्ट नहीं होते, एकाग्रता रहती है, तो हमारे संकल्पों में बहुत बल होता है, और उस बल से समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं और काम भी सहज पूरे होते हैं। इसी तरह संबंध संपर्कों में, दूसरे लोग कुछ बोलते हैं तो मैं सदा ही सरल रहा, दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं मैं सरल रहा, और इसका परिणाम मैंने देखा कि लोगों ने ईर्ष्या करना छोड़ दिया, कमेंट्स करना छोड़ दिया, कंपटीशन करना भी छोड़ दिया, और इसका प्रयोग रहा सरलता का। इसलिए आप अपने जीवन में सरलता एक ऐसा गुण है जिसका पहले 15 दिन प्रयोग करें, फिर उसको कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं। सबसे मुख्य गुण मैं कहूंगा सरलता है, जिससे सहनशीलता भी आ जाती है, आत्मसंतुष्ट हो जाती है, जो अडोलता का आधार बन जाता है, सरलता। ऐसे ही 15 दिन के लिए हम अपने पास संकल्प रख लें कि मुझे सब कुछ सहन करके चलना है। देखिए आप अनुभव, सहन हम क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? हाँ, क्यों नहीं सहन कर पाते? नहीं, एक और छोटी सी चीज, क्योंकि हम सहन करना नहीं चाहते। सोचो आप इस बात पर, ऐसी कोई आत्मा इस संसार में नहीं है जिसके पास सहन शक्ति न हो। कल भी बाबा ने कहा, प्रयोग नहीं करते। बाबा जो पूछ रहे थे, सबके पास सब कुछ है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, और गुण और शक्तियों की बात सुन के हम सब सोच रहे थे कि भाई गुण तो कम है, सभी देखते हैं अपने को, शक्तियां तो कम है, परंतु बाबा हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, उसका प्रयोग करो। सरलता तुम्हारे पास है, उसका प्रयोग करो। सहन शक्ति तुम्हारे पास है, सहन करना चाहो तो सहन हो जाएगा। 15 दिन आप प्रयोग कर लो कि मुझे हर चीज को सहन करना है, और देखो स्थिति कितनी अच्छी रहती है। इस बात का बहुतों ने फायदा उठाया है। आपको याद होगा मैंने पीछे एक लेख लिखा था, सहन करेंगे तो सहनशाह बनेंगे, उसमें ये बात थी कि जो सहन करना चाहते हैं वो सहन कर लेते हैं। कितनी आत्माओं को इसका प्रैक्टिकल फायदा हो गया, कितनों को ही होगा। कितनों ने तो मुझे पत्र लिखे होंगे और पर्सनली बताया कि इस एक लाइन से हमारी सहन शक्ति बढ़ गई। 15 दिन आप इसका प्रयोग करें। ज्ञानी आत्माओं के लक्षण हैं। अब देखिए ज्ञान के प्रयोग की ओर हम चलते हैं। ज्ञानी का लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण, मान अपमान, हार जीत, निंदा स्तुति, सफलता असफलता में समान रहना। आप जरा सा लक्ष्य रख लो, समान रहना है, केवल ये संकल्प के समान रहना है, अपने को विचलित नहीं करना है। इस संकल्प का बल ही बहुत अडोल रखेगा, मदद मिल जाएगी बहुत बड़ी। ज्ञानी आत्मा का लक्षण है, ऐसा ही सबसे सुंदर लक्षण, न्यारापन और प्यारापन। 15 दिन के लिए अभ्यास कर लो, न्यारे और प्यारेपन में रहना है। ज्ञानी आत्मा का बहुत सुंदर लक्षण है अनासक्त वृत्ति। ये मुख्य लक्षण है ज्ञानियों के। 15 दिन के लिए लक्ष्य बना लो, कहीं भी आसक्ति नहीं रखनी है। मान लो आपको महसूस होता है कि मेरी आसक्ति खान पान में है, लक्ष्य बना दो 15 दिन आसक्ति रखनी नहीं है, आप पाएंगे सफलता मिलेगी। हमारे अंदर ये सब शक्तियां छुपी हुई हैं, केवल हम इनको प्रयोग करें इस तरह संकल्पों से। ज्ञानी आत्मा का और सुंदर लक्षण है साक्षी भाव, जो बहुत सुंदर लक्षण है। आप 15 दिन के लिए प्रैक्टिस में ले आओ कि मुझे सबके भाग्य को, सबके पार्ट को साक्षी होकर देखना है, सोचना ही नहीं है क्यों। साक्षी का अर्थ है नो क्वेश्चन, कुछ नहीं सोचना है, जो आत्मा जो कुछ कर रही है करने दो, फ्री, सब ड्रामा अनुसार सब कुछ कर रहे हैं। आप अपने घर में हैं, आप अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ सावधानी देते हैं, कुछ कहते हैं, वो भी साक्षी होकर कहो। इस फीलिंग से नहीं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं ये करें ही। जब ये अधिकार की भावना हमारे अंदर आ जाती है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इन्हें करना चाहिए, इनका कल्याण होगा, तो डिस्टरबेंस होता है। ये भावना तो अच्छी है, अब आप इस पर जरा सा विचार करें, ये भावना कितनी अच्छी है कि जो हम अच्छी बात दूसरों को कह रहे हैं वो उन्हें माननी चाहिए, कल्याणकारी भावना है। लेकिन इसी कल्याण की भावना के साथ साक्षी होना, ये ज्ञानियों का लक्षण है। कई बार हम अपनी कल्याणकारी भावना के कारण अपने को डिस्टर्ब कर देते हैं, और हम बाबा की मुरलियों में हमेशा सुनते हैं कि देखिए शिव बाबा सबको श्रीमत भी देता है। शिव बाबा के मन में, बाप दादा दोनों के मन में सभी के लिए बहुत श्रेष्ठ कल्याण की भावना भी है। बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरा स्वरूप बन जाएं, संसार को बदलने वाले बन जाएं, महान बन जाएं। लेकिन फिर बाबा अगली लाइन कह देता है कि बाबा ये भी जानता है कि करेंगे हरेक उतना ही जितना इनका भाग्य है। अगर उसके पास ये संकल्प न हो तो वो भी डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा कि मैं इन्हें हजारों बार अच्छी अच्छी बातें समझाई है, ये सुधरते क्यों नहीं है। लेकिन शिक्षाएं और साक्षी भाव दोनों का सुंदर बैलेंस दोनों के पास देखा जा सकता है। ऐसे 15 दिन के लिए साक्षी होने का अभ्यास कर लो। बाबा की धारणाओं की एक लिस्ट बना लें आप। 15 दिन अगर आपको ज्यादा लगे, आप हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। धारणाओं की एक लिस्ट बनाएं। बाबा की मुख्य धारणा है किसी को दुख नहीं दो, तुम सुखदेव हो, है ना मुख्य धारणा। बाबा की बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है मीठे बनो, रोज मुरलियों में आ जाता है, बहुत मीठा स्वभाव होना चाहिए। बाबा की धारणा है तुम्हारे बोल चाल चलन रॉयल होनी चाहिए। इनके आप एक एक हफ्ते का प्लान बना लो, एक हफ्ते का प्लान कि एक हफ्ते तक मैं किसी को भी दुख नहीं दूंगा, कम से कम बोल से। कि बोल से किसी को भी दुख नहीं दूंगा, चाहे चुप रहना पड़े। और देखो इसका प्रभाव किस रूप में होगा, जो किसी को दुख न दे एक हफ्ते तक उन्हें क्या मिलेगा, बहुत सुख का अनुभव होगा। ऐसी कम से कम 20-25 मुख्य धारणाओं की एक लिस्ट तैयार करो, गुणों की धारणाओं की, और एक एक हफ्ता उन पर एक्सपेरिमेंट करो। ये बहुत सरल अभ्यास है गुणों को अपने जीवन में लाने का। हर एक चीज पे मेहनत करनी पड़ती है। आप महसूस करते हैं कि मुझे फीलिंग बहुत आती है, एक हफ्ते के लिए लक्ष्य बना लो कि फील करना ही नहीं है, कोई कुछ भी कह जाए, और नई रोशनी प्राप्त हो जाएगी जीवन में। आपको लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, छोटी-छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, एक हफ्ते का लक्ष्य बनाओ कि जब भी क्रोध आएगा इस चीज के प्रयोग के द्वारा क्रोध पे विजय पाएंगे। क्रोध ना आए इससे काम नहीं चलेगा। एक संकल्प लो कि क्रोध को धैर्यता से जीतेंगे, इमीडिएट रिएक्शन नहीं करेंगे। देखिए क्रोध को जीतने का सबसे सुंदर सा तरीका है, एक व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा था किसी पुस्तक में, विदेश के राइटर ने, उसने अपने क्रोध को कैसे जीता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसी वैसी बात करने आता था, लड़ाई जैसी, तो वो अपने मन में संकल्प करता था कि मैं इसका उत्तर एक घंटे के बाद दूंगा, अब नहीं, और उसका क्रोध खत्म हो गया। ये उसने एक युक्ति अपना ली, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो जो मनुष्य के मन में इमीडिएट रिएक्शन होता है ना, किसी ने कुछ कहा और तुरंत एक सेकंड भी रुकते नहीं हम उत्तर देने के लिए, सोचते नहीं है, ये क्रोध की जड़ है। ऐसा आप 15 दिन के लिए, हफ्ते के लिए प्रयोग कर लो कि इमीडिएट रिएक्शन करना नहीं है, तुरंत प्रतिक्रिया अपने मन में करनी नहीं है, थोड़ा सा ठहर जाना है। और एक बार अगर ठहरने की आदत पड़ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही शक्तियों की बात है। शक्तियां, 8 शक्तियां भी हमारे पास हैं और हमारे पास शक्तिशाली संकल्प भी हैं, दोनों के प्रयोग हम कर सकते हैं। ये तो कल बाबा ने हमें चार्ट बनाने की एक बहुत सहज प्लानिंग दे दी। एक शक्ति का प्रयोग रोज कर लो, एक ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग कर लो, एक योग की विशेष विधि का प्रयोग कर लो, और सारा जीवन सरल, पुरुषार्थ सरल। शक्तियों का प्रयोग क्या हम कर सकते हैं, समाने की एक शक्ति है। आप एक हफ्ते के लिए लक्ष्य बना लें कि हम सब कुछ समा कर चलेंगे। समाने का अर्थ है जो कुछ सुनेंगे, जो देखेंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे, बस डाइजेस्ट कर लेंगे, हजम, एक हफ्ते के लिए। कहीं भी समझ में नहीं आता समाना क्या होता है, समाने का सिंपल अर्थ, जो सुना जो देखा वो अपने अंदर, उसको बाहर नहीं निकालना। मनोवैज्ञानिक तो इसको गलत कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ देखा सुना उसको समाओ नहीं, बाहर फेंको। लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि कमजोर है, अगर समाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेट में बदहजमी हो सकती है और बीमारियां बढ़ सकती हैं। लेकिन हम लोग तो शक्तिशाली आत्माएं हैं ना, हम समाएंगे तो शक्तियां बढ़ेंगी। वो समाते हैं कमजोर लोग तो शक्तियां कम होती हैं, हम समाएंगे शक्तियां बढ़ेंगी। तो आप पाएंगे अगर समाने का अभ्यास एक हफ्ते हो जाए तो आप देखेंगे कि जो बहुत सारा विस्तार हो जाता है जीवन में व्यर्थ का, उससे आप मुक्त होने लगेंगे और एकाग्रता बढ़ने लगेगी। ऐसे ही सहयोग की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, गुण भी है और शक्ति भी है। बाबा ने कहा है जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं उनमें एक नेचुरल संस्कार दिखाई देगा, सबके प्रति सहयोग, सबके प्रति, किसी के प्रति मन का सहयोग, वाचा से सहयोग। सहयोग भिन्न भिन्न तरह का होता है, उलझी हुई आत्माओं को, परेशान आत्माओं को, विघ्नों में उलझी आत्माओं को सहयोग देना, मार्ग दिखा देना, कहीं मदद कर देना। इस शक्ति का प्रयोग करें एक हफ्ते के लिए कि हमें सबको सहयोग देते चलना है। 8 शक्तियों का ये लिस्ट हमारे पास है। कहीं विस्तार को समेटना है, कहीं सामना करना है, कहीं हमें परखना है, कहीं निर्णय करना है। एक एक हफ्ते के लिए उनको अभ्यास में लाएंगे तो उनके नए नए अनुभव होंगे। जिस शक्ति को आपको अभ्यास में लाना है उस पर थोड़ा सा चिंतन कर लो कि इसी तरह इस शक्ति का प्रयोग करना है एक हफ्ते के लिए। इसके अलावा जो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है शक्तिशाली संकल्पों का प्रयोग, जो शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। अब शक्तिशाली संकल्प क्या है, जो कल भी बाबा ने कहा, क्या है वरदान बाप दादा का, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही, ये वरदान है हम सबको। अब ऐसे दृढ़ संकल्प आप अपने पास रख लो। कौन से शक्तिशाली संकल्प होते हैं? कम से कम 10, कम से कम 10 शक्तिशाली संकल्पों की आप लिस्ट बनाओ और प्रैक्टिकल उनका प्रयोग करो एक एक हफ्ते तक। उदाहरण के लिए पहला और बिल्कुल सरल शक्तिशाली संकल्प है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, बिल्कुल सहज संकल्प। दूसरा संकल्प है इसी से जुड़ा हुआ और इसको आगे बढ़ा दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और बाबा के महावाक्य याद कर लें कि जो आत्माएं इस नशे में रहती हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, वो अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हैं। प्रयोग कर लें एक हफ्ते के लिए। तीसरा शक्तिशाली संकल्प है कि मेरे साथ भगवान है, इसलिए विजय मेरी ही होगी, है ना शक्तिशाली संकल्प। एक हफ्ते इसको ले आए अपने चिंतन में और स्वरूप भी बन जाएगा और प्रैक्टिकल अनुभव होंगे कि शक्तिशाली संकल्प कैसे विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। शक्तिशाली संकल्प है कि संगम युग को वरदान है, भगवान ने हमें वरदान दिया है, सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता होगी ही, सफलता हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी। ये संकल्प सफलता दिलाएगा। मैंने 2 साल पहले बहुत प्रयोग किए इसके। हर कर्म से पहले इस वरदान को याद कर लें, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। मान लो आप अपने लौकिक ड्यूटी पर किसी अपने ऑफिसर से किसी प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं, पहले ही आपके मन में संकल्प चल रहे हैं, चलते हैं ना संकल्प, पता नहीं बात सुनेगा या नहीं, आज इनका मूड अच्छा हो गया नहीं, कहीं घर में लड़के तो नहीं आया, पता नहीं ये मेरे लिए अच्छी भावना रखता है, मेरा काम करेगा भी या नहीं, पता नहीं कैसा समय है, किसी ने उसको भड़का तो नहीं दिया। कमजोर संकल्पों की बड़ी क्यू है मनुष्य के मन में, चाहे उसके पास ये एक भी चीज न हो लेकिन हम सोचते रहते हैं। तो हमारे कमजोर संकल्प प्रभाव डालते हैं उस व्यक्ति पर, निगेटिव चला देते हैं उसके विचारों को भी। और आप ये लक्ष्य बना लो कि नहीं, मेरा काम तो होना ही है, मैं योगी हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, मेरा काम नहीं होगा तो और किसका होगा दुनिया में, जिसको भगवान साथ दे रहा हो उसका काम नहीं होगा तो और किसका होगा। आप रचो ही पॉजिटिव संकल्प और देखो काम सामने सफल दिखाई देगा। इस तरह अपने संकल्पों को दृढ़ करना, पॉजिटिव करना, शक्तिशाली करना। मैं तो बल्कि ये भी कह सकता हूं कि एक एक दो दो दिन के लिए भी एक एक संकल्प का प्रयोग करना चाहिए। सवेरे ही अपने लिए एक संकल्प दे दो और उसका प्रैक्टिकल इफेक्ट देखो। बाबा साकार मुरलियों में ही समझाया करते थे, साकार में, कि अगर तुम्हें अपने किसी ऑफिसर से छुट्टी लेने जाना है, कौन सी युक्ति बताते थे, है ख्याल किसी को, जिसको हमें प्रयोग करने चाहिए अपने जीवन में, तो उसे आत्मा देखकर बात करो और वो हाँ करेगा। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक दृष्टि से बात करो वो हाँ करेगा ही, वो कहेगा पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हाँ ही लिखे जाते हैं, यस होता है, पीछे सोचेगा कि क्या हो गया था, मुझे इतना काम तो पड़ा था, पता नहीं मैंने हाँ क्यों कर दी। वाइब्रेशंस काम करेंगे हमारे। इस तरह शक्तिशाली संकल्पों का प्रयोग। मान लो आपको जीवन में कहीं भय हो रहा है, कोई भय की घटना हो गई, बात यह होने वाली है, बाबा के इस महावाक्य का प्रयोग करो, अगर तुम बाप से कंबाइंड हो, अगर तुम सर्वशक्तिवान से जुड़े हुए रहो, अगर उससे योगयुक्त रहो, तो तुम जैसा शक्तिशाली संसार में कोई नहीं, और संसार की कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मान लो किसी पर इविल स्पिरिट्स का असर हो गया, भूत प्रेतों का असर हो गया, कोई व्यक्ति आप पे भूत प्रेतों का असर कराने लगा, कोई व्यक्ति कुछ गंदी विद्याओं का प्रयोग आपके ऊपर कराने लगा, आजकल दुनिया में ये सब बहुत चलता रहता है, स्वार्थवश लोग दूसरों को परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे धंधे करते हैं। आप इस नशे में रहो, मैं शिव से कंबाइंड हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, और देखो उनकी सभी शक्तियां फेल हो जाएंगी। हमें ये विश्वास रहना चाहिए कि जब हम और सर्वशक्तिवान कंबाइंड हैं तो संसार की सारी शक्तियां हमारी शक्ति के सामने फेल है। कोई विद्या संसार की, तंत्र मंत्रों की विद्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी आत्माओं का ऐसे प्रयोग आप करके रखो। आतंकवादियों के सामने भी यही प्रयोग किए जा सकते हैं। बिल्कुल अच्छा ये क्वेश्चन, और न केवल थ्योरी है लेकिन कईयों के प्रैक्टिकल अनुभव हुए हैं कि अगर आप अच्छी स्थिति में हैं तो आतंकवादी सबको मार देंगे आपको। प्रैक्टिकल घटनाएं हुई हैं ये। हाँ, हमारे अच्छे वाइब्रेशंस में तो बहुत पावर है। ऐसा ही प्रयोग सभी अपनी शुभ भावनाओं का भी करें। मेरे पास तो शुभ भावनाओं के प्रयोग के हजारों उदाहरण हैं, रोज के होंगे, और बिल्कुल अनुभव ही हमें फिर उमंग दिलाते हैं, एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जिस आत्मा के लिए आप शुभ भावनाएं रखेंगे, हो नहीं सकता वो आपका विरोध करती ही रहे। हाँ, थोड़ा बहुत चल सकता है, हिसाब किताब भी है, लेकिन उसका विरोध दिनों दिन कम होता जाएगा ही। बाबा की कभी मूल्यां चल चुकी हैं, शुभ भावनाओं से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। तो चाहे आतंकवादी हो चाहे डाकू हो, सबको बदला जा सकता है। आप लोगों ने सुना हो पिछले साल की एक कहानी थी, एक भाई का अपहरण कर लिया था, नहीं बाहर का था एक कोई, इधर मध्य प्रदेश साइड का, उसका अपहरण कर लिया और उसको ले गए। उससे 25 लाख रुपए मांग रहे थे, उसके पास बेचारे कुछ नहीं था। अब उसने थोड़ा सा ही ज्ञान लिया था, 3 मास का वो स्टूडेंट था, वो भी थोड़ा थोड़ा आता था, ज्ञान उसको था, कोर्स अच्छा किया हुआ था। उसने कहा भाई मेरे पास तो 25 लाख है नहीं, तुम चाहो तो मुझे मार दो। और धीरे धीरे उनको ज्ञान सुनाना शुरू किया, क्योंकि जब उन्होंने उसको भोजन के लिए कहा, उसने कहा भाई मैं तो ये भोजन खाता नहीं हूँ। पूछा क्यों, क्योंकि वो सब भी तो आदमी होते हैं ना, कोई मनुष्य है वो भी, और उनके अंदर भी मनुष्य के गुण होते हैं। तो पूछने लगे क्यों नहीं खाते तुम भोजन, तो उसने बताया। धीरे धीरे ज्ञान शुरू हुआ और आखिर वो उनके पास 1 मास रहा, और उन्होंने उससे केवल 5,000 रूपये लेके उसको छोड़ दिया। 5,000 भी इसलिए लिए कि भाई लोग हमें कहेंगे नहीं तो हमारी बदनामी होगी, उनका गैंग होता है। लेकिन उसने उनको ज्ञान सुनाया और वो डरा नहीं। जब हम डर जाते हैं और डर के कुछ का कुछ करने लगते हैं ना, अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, तब कहीं कहीं गड़बड़ होती है। अभी अभी एक बहन के साथ एक घटना हुई। बस जा रही थी, रात के लगभग 9 बजे थे। आपको पता हो यूपी में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो भी उग्रवाद का है बहुत ज्यादा। तो रास्ते में बस रोक ली गई, बस में होंगे 15-20 पैसेंजर और एक अपनी बहन भी थी। इन सबको खींच खींच के नीचे गिरा दिया उग्रवादियों ने, और सभी को एक लाइन में खड़ा करके इमीडिएट गोली मार दी। और जब उस बहन के सामने आया तो यहां तक उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी, केवल आंख खुली हुई थी। तो ये बहन भी डर गई थी और बस इसकी दृष्टि उस पर पड़ी और उसने इसको छोड़ा और गए। सबको मार दिया, एक को छोड़ा बस। उनमें बहनें भी थी, वो मार दी गई, बच्चे मार दिए गए। तो हमारी दृष्टि का इसमें ये तो सत्य है कि हमारे आगे पीछे के पुण्य, हम बाबा पर कैसे हैं, कुर्बान कितने हैं, सच्चे कितने हैं, बाबा के प्रति हम क्या कर रहे हैं, उसका तो महत्व है, उसकी मदद मिलती है। परंतु हमारी अपनी स्थिति और उस टाइम, उस बहन ने हमें यही बताया कि मैंने सोच लिया, जब उन्होंने बस जैसे आधे मिनट में ही सबको मार दिया, तो मैंने सोच लिया कि अब तो ये शरीर छोड़ के घर चलना है। और जैसे वो भी यहां से बिल्कुल डिटैच हो गई, और बस इसी क्षण में उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही रखी थी और देख के उसको छोड़ा और फटाफट भाग गए। तो इस तरह शुभ भावनाओं का प्रयोग, आत्मिक दृष्टि का प्रयोग, ज्ञान और गुण, इन दोनों की कुछ पॉइंट्स की आप लिस्ट बना लें जिनको आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं और उनका प्रयोग करें। अब है बात योग के प्रयोग की, जिसको आप एकाग्रता से जोड़ सकते हैं, पवित्रता से जोड़ सकते हैं, विघ्नों को समाप्त करने से जोड़ सकते हैं, अपनी तबीयत से जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे कैसे आप छोटे छोटे प्रयोग करें। हाँ, वो जो एक अनुभव था जो ये सुना रहे थे, मैं छोटा सा मैं शुभ भावनाओं का बता दूं। यहीं पास के एक सिटी में हम लोग प्रदर्शनी करने गए, अग्रवाल धर्मशाला में हमने प्रदर्शनी लगाई। वहां 5 कोई वर्कर्स थे ऑफिस के, वो लड़के थे यंग, वो भी रहते थे। उन्होंने 3 दिन हमारी प्रदर्शनी को पूरी तरह डिस्टर्ब रखने की कोशिश की। सभी को हम बुला रहे थे, हम पांच ही भाई थे, एक पर्चे बांटने चला जाता था, एक लिटरेचर पे बैठता था, तीन समझाते थे। अब वो तीनों को भी डिस्टर्ब करें, हर ग्रुप में मिल जाएं, उल्टे सुलटे क्वेश्चन करें, लिटरेचर पर आके डिस्टर्ब करें, लेकिन हम पांचों ने एक निर्णय कर लिया था कि हमें इनके प्रति शुभ भावनाएं रखनी है और इन्हें कुछ उल्टा नहीं बोलना है, इनको जो भी है करने दो और इनके प्रश्नों का उत्तर प्यार से। तीसरा दिन जब हमने प्रदर्शनी समाप्त की और हम अपना सामान ट्रक में लोड करने लगे तो ये पांचों के पांचों हमारे पास आ गए, आश्चर्य की बात थी, और माफी मांगने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और आश्चर्य ये था कि फिर हमें अपना सामान खुद ट्रक में नहीं रखना पड़ा, इन सभी ने लोड कर दिया। रात के 1 बजे तक बहुत सारा सामान था, हम यज्ञ के लिए चीनी की बोरी गेहूं भी लेने गए थे, वो भी नीचे उतार के रखा हुआ था, वो सब भी उन्होंने ट्रक में चढ़ा दिया और हमें विदाई दी। तो शुभ भावनाओं का बल तो बहुत बड़ा है ही, और इसी तरह घृणा भाव हमारे संबंधों को बिगाड़ता है। आप अपने लौकिक परिवारों में इस एक धारणा का प्रयोग करें, शुभ भाव संबंधों को सुधारता है, घृणा भाव संबंधों को बिगाड़ता है। उस व्यक्ति को जिसके मन में आपके प्रति जरा भी घृणा की फीलिंग है, आप कुछ सिखा नहीं सकते, कुछ नहीं सिखा सकते। आप लाख कहेंगे उसको कि अच्छा बनो, कोई असर नहीं होगा। इसलिए जरा भी घृणा भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। योग के प्रयोग की जब बात है, बाबा आजकल हम सबको याद दिलाते हैं, जब जब कहीं प्राकृतिक प्रकोप होता है जो आगे चल के बहुत होंगे, तो हमें योग के प्रयोग की आवश्यकता होगी। हमें ऐसी आदत डाल लेनी है अपने को कि जब कहीं हम किसी दुर्घटना का समाचार सुने तो केवल हम समाचार सुनने वाले न रह जाएं, घटना का समाचार हम सुनते हैं। कोई भी समाचार हमें ये याद दिलाए कि हमें क्या करना है, ये एक बहुत अच्छी धारणा है, क्योंकि हम लोग नहीं तो केवल समाचार सुनने में व्यस्त हो जाते हैं, और जैसा हम सबको आदत पड़ी हुई है ड्रामा कह के छोड़ देते हैं। ये तो ठीक है, हमें ये पता कि ये सब कुछ होना है और ड्रामा निश्चित है, सबको अब जाना है, परंतु यहीं तक हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। हमें हर घटना अपने कर्तव्य की याद दिलाए कि अगर अब लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा तूफान हो गया, बहुत लोगों को परेशानी हुई, मरने वालों से ज्यादा परेशानी होती है जिंदे रहने वालों को, ठीक है ना, जिनको घर नहीं थे। आपने सुना होगा वहां टेम्परेचर पहुंच गया था -45 डिग्री। अब आप देखो, लाइट फेल, घरों में गैस नहीं आ रही थी, मकानों में कहीं क्रैक हो गई, कोई गिर गए, लोग टेंटों में रह रहे थे, कैसे रह रहे होंगे। तो जो जिंदे थे उनको कितनी परेशानी रही होगी। हम सभी अच्छे वाइब्रेशंस दें ताकि उस टाइम उनकी सहन शक्ति बढ़ जाए, ताकि वो इस प्रकृति के प्रकोप को स्वीकार कर लें, परेशान ज्यादा न हो, जो कुछ सुख सुविधाएं बची हैं उनमें ही सुखी रहना सीख लें, जो उनका नुकसान हो गया उसको भी स्वीकार कर लें, परेशान न हो बहुत। तो योग के प्रयोग, एक प्रयोग में बहुत सिंपल सभी के घरों के लिए बताता हूं, और कईयों ने इसको करके देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कि आप अपने घर में रोज 5-7 मिनट के लिए बैठ जाएं और इस स्मृति से बैठें कि मैं विघन विनाशक आत्मा हूं, और मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, और ये संकल्प करें कि इन वाइब्रेशंस के द्वारा इस घर के विघन नष्ट हो जाएं। रोज करते रहें ऐसा, सिंपल है ना, बहुत 5-7 मिनट। ज्यादा ही विघन आपको नजर आते हो 10 मिनट रोज करें, आप पाएंगे विघन ढीले पड़ने लगेंगे, कि विघन तो दुनिया में दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको अपने बच्चों की चिंता है, मान लो बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, आप इसी तरह 10 मिनट रोज अपने घर में इस स्मृति के साथ योग करें कि मैं सबका पूर्वज हूं, मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते हैं, या मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते हैं और इन सभी आत्माओं का भी कल्याण हो जाए, आप पाएंगे गिरती स्थिति सुधर जाएगी। आपको इसे एक सिद्धांत का हमेशा या ख्याल रखना चाहिए कि हमारे योग के वाइब्रेशंस या हमसे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो उस अनुसार फैलते हैं जैसे ही हमारे मन में स्मृति होती है। अगर आप इस स्मृति से अपने घर में बैठ गए कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का देवता हूँ, तो चारों ओर पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। अपने ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं, अगर आप देखते हैं कि वहां का माहौल बहुत गंदा है, तो आप रोज 5 मिनट, चाहे जब आप वहां जाते हैं 3 मिनट 1 मिनट से शुरू कर लें, इस नशे में बैठ कर के मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाओ, आप देखेंगे उस स्थान का माहौल बदल जाएगा। किसी भी स्थान के माहौल को बदलने के लिए एक अपनी स्मृति उसी तरह की करना और एक दूसरी आत्माओं के प्रति दृष्टि उसी तरह की करना। आप देखते हैं कहीं बहुत है पवित्र माहौल है, आप अपने लिए तो सोचेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं, लेकिन उन सब आत्माओं के लिए भी एक सेकंड के लिए सोच लें कि ये भी पवित्र आत्माएं हैं, मूल रूप में ये सब पवित्र हैं। आप पाएंगे आपके पवित्र वाइब्रेशंस सब पर प्रभाव डालेंगे और गंदा माहौल बदल जाएगा। आप देखते हैं कि आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, कोई ऐसी भयंकर बीमारी है जो जा नहीं रही है, या आपका कोई नजदीकी संबंधी है बहुत बीमार रहते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं। पीछे आपने सुना होगा अभी अभी बाबा की मुरली में, दानी महादानी की मुरली, महादानी और वरदानी की, कि अपने पुण्यों का बल दूसरों को दो, तो पहले अपने पास बहुत पुण्य होने चाहिए। तो जब आप देखें हम बीमार हैं या कोई दूसरा व्यक्ति बीमार है, तो बीमारी को किस स्मृति से खत्म किया जा सकता है? बीमारी किस स्मृति से खत्म होगी? नहीं, और एक चीज, बाबा सुप्रीम सर्जन है ये तो है ही, लेकिन हमें बाबा को कोई मांगना नहीं है कि बाबा आप सुप्रीम सर्जन हो, मेरी बीमारी ठीक कर दो। हाँ, थोड़ी बहुत मदद तो कर देता है, लेकिन फाइनली अपनी बीमारी हमें ठीक करनी होती है, क्योंकि बीमारियों का कारण है प्रकृति के तत्वों का दूषित होना, शरीर में टॉक्सिन्स का आना, जहरीले तत्व पैदा हो जाना। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं या मैं प्रकृति की मालिक हूं? और बाबा को याद करो, बाबा के वाइब्रेशंस लो और महसूस करो बाबा के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा को आ रहे हैं। और फिर ऐसा अभ्यास करो, मान लो आपको कमर में दर्द है, कि मुझसे वो पवित्रता के वाइब्रेशंस मेरी कमर में जाकर उसको ठीक कर रहे हैं। 10 मिनट रोज करो, 15 मिनट रोज करो। आप बिल्कुल खाट पर लेटे हुए हैं, दिन में कई बार ये प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल प्रयोग, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, इस प्रकृति की मालिक हूँ, बिल्कुल इससे अलग, और मेरी पवित्रता के वाइब्रेशंस सारे शरीर के टॉक्सिन्स को, जहरीले तत्वों को बाहर फेंक रहे हैं, ऐसा संकल्प करो। आप पाएंगे हमारे संकल्पों में कितना बल है। विदेशों में एक थेरेपी चली बहुत सुंदर, एक चिकित्सा पद्धति जिससे केवल संकल्प शक्ति के द्वारा बीमारियों को ठीक कराया जाता है, एक एक दो दो मास में, एक स्पेशल बीमारी के लिए स्पेशल संकल्प। और जो आत्माएं पवित्र हैं, जो आत्माएं शक्तिशाली हैं, उनमें तो बहुत ताकत है उनके संकल्पों में। इस तरह का प्रयोग आप रोज करते रहें। कभी आप प्रयोग करें घर में बैठकर, 5-7 मिनट योग में बैठो, मैं आत्मा पीस हाउस हूँ, शांति का भंडार, और योग लगाओ और संकल्प करो कि मेरी ये शांति के वाइब्रेशंस इस संसार की अनेक आत्माओं को शांति प्रदान करें। कभी आप इस नशे में बैठो 5-7 मिनट के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान से वाइब्रेशंस लो, और इस संकल्प से बैठो कि ये शक्ति के वाइब्रेशंस अनेक कमजोर आत्माओं को बल प्रदान करें। ये हैं योग के बड़े सरल प्रयोग। आप महसूस कर सकेंगे, आपको लोग बताएंगे, क्योंकि हमारी ये सब शक्तियां और वाइब्रेशंस पहले उन लोगों को जाती हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं नजदीक। तो कई लोग आपको बताएंगे कि हमें ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी ओर से हमें शक्तियां मिल रही थी, हम बहुत अशांत थे, अचानक ऐसा लगा कि आपकी ओर से शांति के वाइब्रेशंस आ गए, हम बहुत टेंस थे, बहुत टेंशन में थे, ऐसा लगा कि आपने हमारी टेंशन को खींच लिया हो। इसी तरह प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस तरह योग को भिन्न भिन्न संकल्पों से अभ्यास में लाया जाए, इससे एकाग्रता भी बहुत बढ़ती है और इसी तरह अपनी पवित्रता भी बहुत बढ़ती है। मैंने कल आपको एक संकल्प दिया था, आपको अच्छा लगा होगा कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हूं। अच्छा लगा? ये बहुत सुंदर अभ्यास है। कल हमने बहुतों से कराया था, सारा दिन बोर्ड पे भी लिखा था, बहुतों ने किया और अच्छे अनुभव। इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं अपने प्रयोग में। कैसे आगे बढ़ाएंगे कि मान लो आप यहां बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए आप संकल्प करो कि मैं आत्मा इस प्रकाश के शरीर सहित इस शरीर से बाहर निकलकर बाहर सड़क पर घूमने चली गई और घूम रही हूं, और 2-3 मिनट घूम के वापिस आके इसमें प्रवेश कर लेती हूं। बस इतना ही अभ्यास। जहां भी आप अपने घरों में हैं, वहीं बैठ के ये अभ्यास किया करें कि 3 मिनट के लिए मैं आत्मा इस प्रकाश के शरीर सहित बाहर और कहीं भी घूम रही हूं और घूम के वापिस इस शरीर में आ गई। क्योंकि हमारी एकाग्रता के लिए भी अशरीरीपन का अभ्यास ही सबसे सुंदर विधि है मेरे अनुभव में, और तरीकों से भी सहज तरीका। जितना जल्दी हम अशरीरी होना सीख लें, कंसंट्रेशन उतनी जल्दी हो जाती है। तो इस तरह योग के भिन्न भिन्न प्रयोग, ज्ञान के और धारणाओं के, आप अपना एक प्लान बना लें, वीकली प्लान चाहे 15 दिन का प्लान। प्लान जितने छोटे होते हैं उतना रस आता है, परंतु वीकली प्लान तो होना ही चाहिए ताकि हमें कुछ अच्छे अनुभव हो जाएं। तो ये बिल्कुल सरल विधि बाबा ने हम सबके सामने योग की रख दी है और सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, या इसमें कोई कठिनाई है किसी को? जब लौकिक जीवन में विघ्न आते हैं, उनको भी इस निश्चय और अभ्यास से कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं और संकल्पों की दृढ़ता के बल से ठीक करना चाहिए। आपका उसका अटैक आपकी फोर्स को बढ़ा दे। कोई व्यक्ति जब अटैक करता है तो कमजोर आदमी में भी ताकत आ जाती है ना। एक लंगड़ा आदमी था, उससे चलन जाता था, अचानक एक सांप निकल गया, वो इतनी तेज भागा कमरे से बाहर, लोग कहने लगे कि देखा, अब तक तो कहता था कि मुझे बाथरूम भी कोई पकड़ के ले जाए, और घर में सांप निकल गया तो कितनी तेजी से भाग के बाहर आ गया है। आ जाती है ना ताकत। तो दूसरा अटैक करे तो हमें भी ताकत आ जाए ना। माया जोर से आ रही तो हम कम है क्या? जब माया जोर से अटैक करे, अपनी शक्तियों को याद करो, हमारे साथ कौन है। बस माया इतना ना कर दे कि हमें अपनी शक्तियों को भुला दे। जैसे आजकल चोर डाकू उग्रवादी करते हैं ना, तार वार काट देंगे या जो आपके शस्त्र हैं पहले उन पे ही कब्जा कर लेंगे। तो माया भी ऐसा ही कर लेती है कि पहले हमारे शस्त्रों पे ही कब्जा कर लेती है। हमें ये ना भूल जाए कि हमारे साथ कौन है, बस फिर हमारा फोर्स बढ़ जाएगा। और कुछ? चलो, अभी आगे भी आपका क्लास है, बोलो। ऐसा है, अगर हमने अपनी स्थिति को थोड़ा अच्छा बनाया होगा तो आप ये पाएंगे होगा वही जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। ये हमारे बहुत बड़े विकर्मों का परिणाम होता है कि जब हम बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नहीं देखते जो हम चाहते हैं। बाबा ने अभी अभी भी एक मुरली में उत्तर दिया कि जो हम चाहते हैं वो न हो और जो हम नहीं चाहते वो होता रहे। ये दोनों निशानी हैं कड़े विकर्मों की। इसलिए थोड़ा अपनी स्थिति पे ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही होता रहेगा। हाँ, मैंने 5 मिनट क्यों, 1 घंटा जो कहा उसके ऊपर। तिरस्काल दर्शी कर्मों में बनने का सीधा अर्थ जो बाबा ने कहा, कुछ भी कर्म करो आगा पीछा सोच समझ के करो। भाई इसका परिणाम क्या होगा, आप किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं, मान लो आपके मन में गुस्सा भरा हुआ किसी के लिए और आप जा रहे हैं उसको कुछ सुनाने दो चार खरी खोटी, तो जरा सोच लो कि आप सुना तो देंगे लेकिन इसका आगे परिणाम कहीं बुरा ना हो जाए, बढ़ न जाए बात, इसलिए उसको खत्म कर देना अच्छा होता है। आप कोई और कर्म करने जा रहे, कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे अपने लौकिक जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने धंधों के लिए, उसमें भी विवेक युक्त होकर जरा सोच लो। और अगर कोई ऐसी चीज है कि जिसके बारे में आप नहीं सोच पा रहे, तो जो आपके शुभ चिंतक हैं, जिन पर आपको विश्वास है, जिनको आप योग्य समझते हो, उनकी मदद ले लो। बाकी हर कर्म में, हर बोल में जरा सोच लेना कि इसका परिणाम कहीं बुरा तो नहीं होगा, यही त्रिकालदर्शी होके कर्म करने की बात है। बड़ी सिंपल अप्रोच है ये, कोई विशेष बात नहीं है। लौकिक में भी जो समझदार होते हैं तो सोच समझ के कदम उठाते हैं ना। कोई व्यक्ति है, फटाफट बोल देना, फटाफट निर्णय लेना, फिर पछताते रहना, तो जो सभी तो समझदार हैं, बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है पूरा क्या करने से क्या होता है। और अगर कहीं फिर हमसे गलती भी होगी तो हम सीखते भी चलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए हमें भविष्य के परिणाम को सोच के निर्णय लेना है बस। चलो अभी 3 मिनट बाबा की याद, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो लेंगे, दूसरी क्लास होगी। ओम शांति।